الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس میں ہم نے آیات نمبر 93 سے 100 تک کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، اور آج خلاصہ تفسیر ان آیات کی پڑھنی شروع کر رہے ہیں 140 نمبر صفحے سے. تو خلاصہ تفسیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے لی گئی ہے، اور جو بین السطر یعنی انڈر لائنڈ الفاظ ہوتے ہیں وہ ترجمہ ہوتے ہیں، اور بریکٹس کے اندر تفسیر ہوتی ہے. تو ساتھ ساتھ یعنی ان لائن تفسیر فرمائی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اب تم، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم میرے باپ کو جا کر بشارت دو، اور بشارت کے ساتھ میرا یہ کرتا بھی لیتے جاؤ. اذهبوا بقمیصی. تو باقی تو تفصیلاً بیان فرمایا، لیکن جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب تم میرا یہ کرتا بھی لیتے جاؤ، میرا کرتا لیتے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور یہاں تشریف لے آئیں گے. یعنی کیا خوبصورتی ہے بیان القرآن کی، کہ حضرت جو ہے نا وہ ترجمے کو با محاورہ اردو میں پیروتے جاتے ہیں اپنی تفسیر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ صرف ترجمہ کر دینے سے بات مکمل بھی نہیں ہوتی، اور یعنی الگ سے تفسیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ترجمہ بھی آئے گا، اور یعنی دوبارہ سے ترجمہ آئے گا، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ یعنی اس کے ایڈیشنل جو ہے وہ تفسیر لکھنی ہوگی. تو حضرت نے دوبارہ سے ترجمہ لکھنے کو اوائڈ کرتے ہوئے جو ترجمہ ہے اس کے درمیان ہی ایسے تفسیری الفاظ داخل فرمائے کہ جس سے کہ مفہوم معنی جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے نا بیان القرآن یہ اردو زبان کی ایک بہترین تفسیر کہلاتی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ تفصیل تو ہے نہیں، کوئی بہت ہی زیادہ کوئی یعنی معارف و مسائل اور نکات اور یہ سب کچھ تو زیادہ تر نظر نہیں آتے اس کے اندر. زیادہ تر وہ تو دوسری تفاسیر میں نظر آتے ہیں، یا اسی کے اندر معارف و مسائل میں چلے جائیں تب آپ کو جو ہے وہ اہم اہم اور بڑے زبردست قسم کے نقطے نظر آتے ہیں. بیان یہ خلاصہ تفسیر میں آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن خلاصہ تفسیر کی اپنی ایک الگ شان ہے. نقطے بھی ہوتے ہیں اور درمیان میں تفسیر ڈال ڈال کر کے جو ہے نا وہ پورا ایک فلو بنا دیتے ہیں حضرت، آن دی سیم سٹائل از جلالین شریفین. ہاں بے شک جلالین شریفین کے اندر بھی یہی والا طریقہ جو ہے وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے استعمال فرمایا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرا یہ کرتا بھی لیتے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور یہاں تشریف لے آئیں گے، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ کہ سب ملیں اور خوش ہوں، کیونکہ حالت موجودہ میں میرا جانا مشکل ہے، اس لیے گھر والے ہی چلے آئیں. کیونکہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ سارا کا سارا بوجھ پڑا ہوا تھا، ایک تو امور سلطنت کا اور پھر اس کے بعد قحط کی مینجمنٹ کا، یہ جو قحط پڑا ہوا تھا تو اس کی بھی ساری مینجمنٹ انہی کے کندھوں کے اوپر آئی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے. تو ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو یعنی ایسی اگر کوئی سیاسی ذمہ داریاں آ جائیں نا جس کے اوپر کے پھر مملکت کے انتظامات ڈپینڈ کرتے ہوں، انسانوں کی زندگیاں ڈپینڈ کرتی ہوں، اور ان کے یعنی امور سلطنت کیا ہے، یہ کوئی امور سلطنت یہ کوئی تھوڑی ہوتے ہیں کہ جی ادھر بتیاں لگا دینی ہیں، ادھر جو ہے وہ لالٹینیں جلا دینی ہیں، ادھر جو ہے وہ چراغاں کر دینا ہے، ادھر جو ہے وہ جیسے اب ہمارے امور سلطنت ہونے والے ہیں 2-3 دن میں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، کہ سلطنت جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ جھنڈے لہرائے گی.
राइट, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज होंगी, और जो है वो कौमी तराने पढ़े जाएंगे, और जो है वो ये सब होगा। तो उमूर सल्तनत जो है ना, वो ये डेकोरेटिव काम नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगियां, वो उमूर सल्तनत का मतलब होता है कि उनको कैसे केओस से बचाना है, कैसे जो है वो जाया होने से बचाना है, कैसे उनकी सलाहियतों को और उनके रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है, और साथ साथ जो है वो नुकसान भी ना हो, ठीक है, आपस में लोगों के मामलात भी खराब ना हो, लड़ाई दंगा फसाद भी ना हो। तो ये उमूर सल्तनत जो है ना, ये यानी दिस इज कॉल्ड, जैसे कि दवाई दवाइयां होती है ना, मेडिसिन, तो उनमें कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको के लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जान बचाने वाली दवाइयां। और बाकी दवाइयां जो होती हैं वो कुछ टॉनिक शॉनिक टाइप टाइप की होती हैं, मुकवी किस्म की, आयरन हो गई तो फलानी की कैप्सूल हो गई, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं कहलाती। लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती हैं, या लाइफ सेविंग जो डॉक्टर्स होते हैं इमरजेंसी रूम्स के अंदर, आईसीयूज के अंदर, वो उनकी छुट्टी नहीं होती, या छुट्टी अगर होती भी है ना तो दूसरा रिप्लेस करेगा जो कि इक्वली कॉम्पिटेंट हो, तब कहीं जाकर के छुट्टी होगी, वरना नहीं छुट्टी हो सकती उनकी। तो सल्तनत की उमूर को चलाना इज, इट इज एक्चुअली इवन मोर इम्पोर्टेंट देन रनिंग एन आईसीयू, हॉस्पिटल का आईसीयू चलाना, या ईआर डिपार्टमेंट चलाना, या लाइफ सेविंग ड्रग्स एडमिनिस्टर करना, ये इससे भी ज्यादा अहम काम है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो पूरी की पूरी यानी इंसानों की मुआशरे का और सोसाइटी और जो है वो इज्तिमाई अहवाल जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बजाहिर ऐसा लगता है कि जी इन्होंने जो है वो अपने वालिद मोहतरम जो कि वक्त के नबी थे, उनका इकराम नहीं किया, इनको तो चल के जाना चाहिए था वहां पे, और उनको अपने कंधे पे बिठा करके वापस लेकर के आना चाहिए था, बाप भी थे और नबी भी थे और सब कुछ थे, लेकिन नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? सुस्ती की वजह से, नाउज बिल्ला, हरगिज नहीं, या किसी और के जिम्मे काम लगा दिया, खुद काम नहीं करना, हरगिज नहीं, बल्कि उमूर सल्तनत कि ऐसी अहमियत है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा अदब वाला मामला भी जो है ना वो भी दूसरों के हवाले करना पड़ा, ठीक है। तो ये होता है सियासत को वैसे चलाना जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए मुकद्दर किया है, जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पसंद किया, ठीक है। तो है ना, इस दुनिया के अंदर ये हमें सब कुछ सीखने लिए आई ही हैं, लेकिन उमूर सल्तनत चलाना, उसकी अहमियत बतलाना, ये सब भी नबियों के जरिए से हमें पता चलता है। तो इन्होंने फिर कहा कि इसलिए घर वाले ही चले आए, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात हो चुकी और आपके फरमाने के मुवाफिक कुर्ता लेकर चलने की तैयारी की और काफिला शहर मिस्र से चला जिसमें ये लोग भी थे, तो उनके बाप ने पास वालों से कहना शुरू किया कि अगर तुम मुझको बुढ़ापे में बहकी बातें करने वाला ना समझो तो एक बात कहूं कि मुझको तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो जो अल्फाज थे ना उसमें हमने तर्जुमे में पढ़ा था, लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे बहकी बहकी बातें करने वाला ना समझो, तो बहकी बहकी बातें करने वाला समझना ये एक मुहावरा, इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन लफ्ज का मतलब क्या होता है कि मुझे झुटलाओ नहीं, मुझे गलत साबित ना करने की कोशिश करो, तो फिर मैं तुम्हें एक बात कहूँ, ठीक है। लौला अन तुफन्निदून, तुफन्निदून, तो उन्होंने कहा कि मुझको तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद आई कि हमारी जो यूथ क्लासेस होती हैं जिसमें के 5 से बल्कि नहीं 6 से 60 साल के बच्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो उस क्लास में जो हमारे नजीब भाई पढ़ा रहे थे मुस्लिम हीरोज की क्लास, तो उसमें आजकल जो है ना हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह, ठीक है। अच्छा, सुभान अल्लाह, हज के जमाना आता है तो सीरतुल नबी में हज्जतुल वदा चल रहा होता है, और अभी जो है ना वो 14 अगस्त आ रहा है, और 14 अगस्त और 15 अगस्त का खास ताल्लुक जो है ना वो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब के साथ रहमतुल्ला है। तो आजकल जो है वो हमारे यहाँ अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्ला के पहले से कोई प्री प्लान नहीं होता है, सब कुछ अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देते हैं। तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्ला का एक वाकया पिछली क्लास में जो है वो क्लास को बताया उन्होंने कि कोई बात हुई है, मुझे पूरा एक्चुअली याद भी नहीं है, मैंने सुना भी पूरा नहीं था, लेकिन इतना था कि उस जमाने का जो कोई गवर्नर जनरल था या कोई उसके साथ जो है ना अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की किसी मामले में बात हो गई, इन्होंने अपनी राय दी। तो वो कहता है कि मौलाना साहब ये उमूर सल्तनत के मामलात हैं, ये आप मौलवियों को क्या मालूम, ये उमूर सल्तनत के मामलात हैं, ये आप मौलवी लोगों को क्या मालूम। तो उन्होंने जवाब दिया, टिका के जवाब दिया ना उसको, उन्होंने कहा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जो है ना वो सिर्फ फर्क ना ABCD का है, गवर्नर जनरल था ना उस वक्त का, तो हमारे तुम्हारे दरमियान फर्क सिर्फ ABCD का है, अगर ये फर्क ना होता ना तो हम तुम्हें बताते कि कौन इल्म वाला है और कौन जाहिल है, ठीक है, यानी तुम जाहिल हो उमूर सल्तनत के मामले में और हम तुम्हें बताते कि इल्म वाला कौन है, क्यों, इसलिए कि जो उमूर सल्तनत का सही तरीका है, अच्छा तरीका है, वो तो अल्लाह ताला का सिखाया हुआ तरीका है, वो किसको सिखाया, नबियों को सिखाया, और नबियों के वरसा कौन है, वो ये जाहिल गंवार ABCD के टिटबिट करने वाले यूरोप के गुलाम ये नहीं है, नबियों के वारिस ये नहीं है, नबियों के वारिस तो उलमाए कराम है, राइट, नबियों के वारिस तो उलमाए कराम है और उनको पता है कि उमूर सल्तनत कैसे चलाए जाते हैं, ठीक है। हाँ ये बात और है कि अगर आप अपनी पूरी की पूरी सल्तनत को जहन्नुम में झोंकना चाहते हैं तो फिर आप ही को ज्यादा पता है कैसे झोंका जाता है, तो आप ही जाहिर सी बात है झोंकने के सारे उसूल आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम को जो है वो जहन्नुम में झांक झोंकने के उसूलों का पता तो है, लेकिन वो लोगों को उन उसूलों पर चलाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो जहन्नुम से बचाने का काम करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, सही है। तो अब आप अगर जहन्नुम में जाना चाहते हैं तो फिर आप आलिम हैं, आप ही इसके एक्सपर्ट्स हैं, जहन्नुम में कैसे जाया जाता है, लेकिन अगर आप दुनिया और आखिरत की जन्नत, दुनिया में भी जन्नती माहौल बनाना चाहते हैं और आखिरत की भी जन्नत चाहते हैं, तो उसके लिए तो इन मौलवियों के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अंबिया के वरसा ये मौलवी ही है, इन्हीं के पास वो उलूम है जो कि अल्लाह ताला ने अंबिया के वास्ते से इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। हाँ उन्होंने, ये किसी ने लिखा है, माशाल्लाह किसी नौजवान ने लिखा है कि बिटवीन अस एंड यू आर जस्ट ABC कर्टन्स, ABC के कर्टन, ये बस ये एक पर्दा है, ठीक है, क्योंकि उलमा में अक्सरियत जो है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ी लिखी होती, माशाल्लाह अरबी उलूम ही इतने ज्यादा होते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए मजीद 24 घंटे एक दिन के अंदर वो पैदा नहीं कर सकते, वही 24 घंटे हैं, इसके अंदर सोना भी है और बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां भी होती हैं और घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं और साथ साथ जो होता है पढ़ना भी होता है और पढ़ाना भी होता है, तो इतनी मसरूफ जिंदगी के साथ जो है ना वो अंग्रेजी सीखने की कोई उनको जरूरत भी नहीं है, तो जो अंग्रेज दान है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाकर के उनसे जो है वो सीखें और फिर अंग्रेजी में सारी दुनिया को बताएं, ये अंग्रेज दानों की जिम्मेदारी है, ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी अंग्रेजी सीखें, सीख लें तो बहुत अच्छा, अल्लाह उनको मजीद जजाय खैर अता फरमाए, लेकिन उनका उनका काम है अरबी और अरबी के उलूम को समझना और अरबी के उलूम को जो है ना फिर वो जो अवाम उन्नास की जुबान है वो उर्दू जुबान है, हमारी अंग्रेजी असल जुबान नहीं है, हमारी हमारी जुबान तो उर्दू जुबान है, वो तो गुलामी की जुबान है ना अंग्रेजी, वरना अंग्रेजी का क्या ताल्लुक हमसे, हमें अगर सीखना है तो हम जा करके वो अफगानी क्यों नहीं सीखते, हम जा करके बंगाली क्यों नहीं सीखते, हम जा करके श्रीलंकन लैंग्वेज क्यों नहीं सीखते, हम जा करके नेपाली लैंग्वेज क्यों नहीं सीखते, हमारे पड़ोस में तो ये सारे मुल्क हैं, अंग्रेजी की क्या तुक बनती है, क्या तुक बनती है, कोई तुक नहीं बनती है अंग्रेजी की सिवाय इसके कि हम गुलाम हैं अंग्रेज, और कोई तुक नहीं है अंग्रेजी जुबान की, इस वजह से सीखनी पड़ रही है, जब गुलामी खत्म करेंगे तो फिर अंग्रेजी सीखने की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। तो बहरहाल फरमाया कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, तो इसकी तफसीर में हजरत फरमाते हैं कि मुअज्जा इख्तियारी नहीं होता, इसलिए इससे पहले ये इदराक ना हुआ, ये इनके इख्तियार में कोई थोड़ी था, अल्लाह ताला ने अभी इनको खुशबू सुंघाई, पहले नहीं सुंघाई थी, और वो पास वाले कहने लगे कि बखुदा आप तो अपने उसी पुराने गलत ख्याल में मुबतला हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और मिलेंगे, इसी ख्याल के गलबे से अब खुशबू का वहम हो गया, ठीक है, इस जगह पे क्या बात करी थी, किसी को याद है? क्विज भी तो थोड़ा सा होना चाहिए ना ड्यूरिंग द क्लास। वाह वाह, तो इस मुकाम पे जब तर्जुमे में हम पहुंचे थे तो क्या समझाया था, थोड़ा सा अगर हिंट दे दें अगर आप में से कोई। जी वाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई सुनकर के, देख करके के, लेकिन ज्यादा खुशी हुई इस बात पर कि जवाब देने वाले जो है ना वो कम उम्र के, बिल्कुल ही नौजवान है, न्यू न्यू यानी 14 years old। ठीक है, और जो माशाल्लाह बुजुर्गाने दीन हैं, बुजुर्गाने दुनिया हैं, तो अल्लामा इकबाल फरमा गए, हमारे हजरत जी बार बार फरमाते हैं कि नहीं है, नहीं मायूस है इकबाल अपने कश्ते वीरा से, नहीं मायूस है इकबाल अपने कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साफी। ठीक है, तो अल्लाह ने नौजवानों से ही काम ले लिया, तो याद रखते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर सवाल के जवाब भी जो है वो तैयार रखते हैं। बहरहाल कबूल फरमाए। वो किसी भाई से बात हो रही थी, बल्कि अभी जिनका जिक्र आया नजीब साहब, तो उन्हीं से ही बात हो रही थी कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, तो ये अलावा इकबाल तो कह के चले गए, और हमारे बुजुर्ग भी जो है वो बार बार हमें याद दिलाते रहते हैं, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा। ठीक है, तो वो अलामा इकबाल तो कह गए थे जरा नम हो तो, जरा नम हो तो, ये क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये जुमला शर्तिया है, जरा नम हो तो, अगर नम नहीं हो तो जरखेज नहीं है, नम नहीं है तो जरखेज नहीं है, नम हो तो जरखेज है। हमने जो है ना ये कंडीशनल स्टेटमेंट को तो साइड पे कर दिया, और हमने कहा नहीं, सब कुछ जरखेज है, बस जरखेज ही जरखेज है। ठीक है, नम शम होने की कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मेहनत करने की, इसकी फिक्र करने के लिए, हत्ता कि इसके लिए दुआ मांगने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि सब कुछ इधर खेज है, राइट? तो भाई अपनी फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहना है तो रहें, ठीक है, जितना चाहे रहें अपनी फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर, लेकिन आपके फैंटेसी वर्ल्ड में रहने से जो है ना ये वर्ल्ड फैंटेसी बन नहीं जाती। ठीक है ना, रियलिटी जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली यही है कि अभी जो है ना वो कश्ते वीरा ही है, ये कश्त या दश्त है या कश्त है या कश्ती है, जो भी है ये वीरान ही है, ये जरखेज हो ही नहीं है, चाहे आप जो है ना वो, फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव बीज डाल डाल करके जो है ना वो कितना ही यानी फसलें जो है वो बढ़ाते चले जाएं और जो है वो ग्रीन करते जाएं पेस्टर्स को, लेकिन भाई ये फिजिकल जरखेजी की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये फिजिकल जरखेजी की बात नहीं हो रही, तो इस वजह से ना ये रेडियो एक्टिव सीड्स के जरिए से जो आप जरखेजी समझ रहे हैं ना, जिसको जरखेजी, ये जरखेजी अल्लामा इकबाल नहीं कह रहे थे, इस जरखेजी की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो भाई अभी तो है कश्ते वीरा, ठीक है ना, जब तक दीदे कसूर मौजूद ना हो ना उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता, तो यानी कश्ते वीरा है उसको जो है वो जरखेज समझे चले जा रहे हैं, तो फिर तो हो चुकी इसलाह, फिर तो हो चुकी जो है वो तब्दीली, राइट, आ चुकी तब्दीली, फिर तो पहले तस्लीम करेंगे कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, तब कहीं जा करके कुछ सही तरफ में कदम उठाएंगे। तो नम नम जो है ना ये शर्त है, नम किए बगैर कुछ नहीं होने वाला है। बहरहाल अल्लाह ताला करेंगे, हम ना करें तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला किसी दूसरी कौम को पैदा फरमा देंगे, राइट, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल है, किसी दूसरी कौम को पैदा फरमा दें, बिल्कुल यानी फ्रॉम जीरो पैदा फरमा दें, या कोई मौजूद कौम है उस कौम को जो है वो कन्वर्ट कर दें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दें, कोई मुश्किल है अल्लाह के लिए? नहीं, अल्लाह के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है, अल्लाह के लिए नहीं है। बहरहाल तो फरमाए के कहने लगे कि बखुदा आप तो अपने उसी पुराने ख्याल में मुब्तला हैं कि यूसुफ जिंदा हैं, मिलेंगे, इसी ख्याल के गलबे से अब खुशबू का वहम हो गया आपको, और वाकई में तो ना खुशबू है ना कुछ और है। तो याकूब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, घर वालों के सामने जो है ना वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े भी जो है वो अकलमंद अगर होते हैं, अकलमंद अगर होते हैं ना, तो वो पी जाते हैं। और जो बेवकूफ होते हैं वो आगे से लड़ जाते हैं, वो आगे से भिड़ जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो किससे भिड़ रहे हैं, वो किससे लड़ रहे हैं। ठीक है ना, खवातीन अगरचे की क्लास में हैं लेकिन उनकी असलाह की बात यह है कि वो तमीज, ये उनकी उनकी जिम्मेदारी है तमीज से बात करना। लेकिन मर्द साहब की जिम्मेदारी ये है कि वो जो है ना, वो अल्लाह की खातिर और दीन की खातिर और शराफत की खातिर पंगे मत लिया करें। ठीक है ना, पंगे मत लिया करें, लेंगे तो आप ही पछताएंगे, आप ही पछताएंगे। खातून के पास इतनी अकल नहीं है कि वो पछताए, वो नहीं पछताने वाली, आप फिक्र ना करें, वो नहीं पछताएगी। आप मतलब वो पछताए ना पछताए, वो अल्लाह के हवाले, वो मसला अल्लाह के हवाले, आपके आपका ये मसला नहीं है। दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज योर सेल्फ, योर प्रॉब्लम इज योर सेल्फ। ठीक है ना, आप क्यों पछताने के लिए परतोल रहे होते हैं हर वक्त जो है ना, वो पंगा लेना, हर वक्त जो है वो झगड़ा करना। ठीक है ना भाई, मर्द बनाया अल्लाह ताला ने, तो मर्द यानी बन करके भी रहे ना। ठीक है, तो ये याकूब अलैहिस्सलाम से नसीहत हासिल करें या फिरौन से नसीहत हासिल करें? है? याकूब अलैहिस्सलाम नहीं नजर आ रहे, हमारे बड़े नजर नहीं आ रहे, हमारे अकाबरीन नजर नहीं आ रहे, हमारे मशायख नजर नहीं आ रहे अगर आपको, तो भाई फिरौन से ही अकल सीख लें। ठीक है, तो इन्होंने लिखा इस मामले में तो फिरौन भी अकलमंद निकला। ठीक है ना, उसने भी जो है वो बात मान ली थी, मान ली थी कि नहीं मान ली थी। ठीक है, तो भाई अब जो फराइज हैं, अल्लाह के अहकामात हैं, उनके अंदर जो है वो बीवी के सामने घुटना नहीं टेक सकते, उनके मामले में बीवी के सामने घुटना नहीं टेक सकते, फराइज के मामले, राइट, दीनी गैरत के मामले। लेकिन अपने मामले में ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तहम्मुल सीखें, अकल सीखें, राइट, कुर्बानी देना सीखें। ठीक है ना, बीवी को अल्लाह के हवाले करें, अल्लाह ताला इसको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला इसको अकल समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला इसके दिल के अंदर मेरी इज्जत पैदा फरमा दे, उसको अल्लाह के हवाले करें। ठीक है ना, याद रहेगा इंशाल्लाह, मारुफुल कुरान पेज नंबर 140, मारुफुल कुरान पेज नंबर 140 क्या लिखा हुआ है? याकूब अलैहिस्सलाम खामोश हो रहे। ठीक है, तो गलती कोताही इंसान से हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, हमसे भी कभी हो जाती है, लेकिन टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, हम डिवाइन से, हम अल्लाह ताला से फॉरगिवनेस मांगेंगे, अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन फॉरगिवनेस मांगने का के लिए शर्त यह होती है कि इंसान अपनी गलती को तस्लीम करे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, फिर अल्लाह ताला से भी माफी मांगे, और अगर हो सके तो बीवी से भी माफी मांग ले। तो बीवी भी माफ कर सकती है, अल्लाह ताला तो कर ही देते हैं माफी मांगने वाले को माफ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इरादा करेंगे ना, फिर इरादा करते हैं, तबलीग जवान में जिस तरह से इरादा है, इरादा करेंगे सब। ठीक है, सबने इरादा कर लिया, चाहे खवातीन है वो अपने जन्नत का इंतजाम करें, वो अपने फिक्र करें कि बदतमीजी करके वो जन्नत में नहीं पहुंच सकेंगी, वो अपना फिक्र करें, बदतमीजी करके शौहर के साथ जन्नत की बजाय सिर्फ ठेंगा मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन दिस इज योर प्रॉब्लम। हम तो यहाँ पर रिजाल की बात कर रहे हैं, मर्दों की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सेट हो गए, दोनों का दिमाग जो है उम्मीद है कि सेट हो चुका होगा, नहीं हुआ तो बताएं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, आपने फरमाया, मेरा आलम ने भी जाना, वो आबैन मुझे मार काम कर लिया है तो अब पछतावे क्या हो, नहीं क्या कहते हैं, जब जब क्या कहते हैं वो मुहावरा, मूसल से क्या डरना, जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। ठीक है ना, तो अब जब आप बहन मुझे मारा आपने कह दिया है, तो फिर अब आपको हर किस्म के सवालों का जवाब देना पड़ेगा या उनको देखना पड़ेगा। तो बहरहाल एक नंबर सा सवाल आ गया है कि आपने फरमाया कि बीवी को इस तरह की बात करने का हक होता है, और लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि उनकी बहू नहीं, उनकी बहू ने ये बात कही थी। मेरा सवाल ये है कि क्या घर की बहू ये या किसी और फर्द को ये हक है कि वो इस तरह की बात करे? नहीं भाई, अब जाहिर है उम्र आपकी कम है, मेच्योरिटी लेवल अभी आपका थोड़ा सा जाहिर है वैसा नहीं है, तो इस वजह से ना अल्फाज को आप समझ नहीं पाते हैं। और भी दो बच्चों ने मिस्टेक करी थी। अल्फाज बजाहिर जो है ना वो कुछ होते हैं, उनके मानी कुछ और होते हैं। तो बीवी को हक होने का मतलब ये नहीं है कि शरीयत ने बीवी को हक दिया है, ये मर्दों को समझाया जा रही है कि भाई वो बीवी है, बीवी बस बीवी ऐसी होती है, ठीक है ना, जस्ट 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 एक्सेप्टेड। तो हक नहीं दिया, यानी कोई शरी तौर पर उनको हक नहीं है। अगर वो बदतमीजी करेंगे वो उनको अपनी सजा मिलेगी, ठीक है ना। ये बीवियों की क्लास के अंदर भी हमने बड़ा जबरदस्त तरीके से उनको सारे पॉसिबिलिटीज के साथ समझा दिया, ठीक है ना। अब ना समझें तो ये हमारा मसला नहीं है, उनका मसला है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से समझाया कि बदतमीजी की किसी सूरत गुंजाइश, किसी सूरत बदतमीजी की गुंजाइश नहीं है शोहर के साथ, ठीक है। तो हमने कोई नहीं कहा कि बीवी को हक हासिल है, आप समझे नहीं है बात को। आज है ना वो किसी के साथ बड़े मजे की बात हुई हमने किसी को लिख दिया था कि भाई हमने, हमारे हजरत ने जो है ना वो रहे सलामत तुम्हारी नस्बत किताब के अंदर जो नस्बत के हुसूल के तरीके लिखे हैं ना, आप उनको घोल के पी जाएं, आप उनको घोल के पी जाएं। तो उनका आज मैसेज आता है कि आपने कहा था कि घोल के पी जाएं, तो हम घोल के पीने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लोग मना कर रहे हैं कि ये बेअदबी होती है किताब के साथ। तो हमने कहा कि भैया आपको अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए, आपने घोल के पीने का क्या मतलब समझा है? तो उन्होंने लिटरली यही जवाब दिया कि घोल के पीने का मतलब समझा है कि पानी के अंदर सफे को घोल करके फिर उस पानी को पी जाए। तो हमने कहा अल्लाह, यानी लिटरली ऐसा भी है, मैं अभी ये काम कर चुका हूं, ठीक है। मैंने कहा खुदा की बंदी, ये मतलब नहीं था घोल के पीने का, ये मुहावरा है उर्दू जुबान का। इसका मतलब ये होता है कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और अच्छे से याद रखने की कोशिश करें, ये मतलब होता है घोल के पीने का। तो उन्होंने कहा ओ हो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो सफा भी फाड़ दिया था किताब का सही है, तो ऐसा भी होता है, दिस इज रियलिटी, ठीक है। बहरहाल बहरहाल, ना बहू को हक है ना जो है वो बीवी को हक है ये सब करने का, लेकिन बीवी बीवी होती है, वो कर जाती है, और शौहर का काम ये है कि वो उसके ऊपर सब्र करे। नबी अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही किया करते थे, याकूब अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया, और तो और उस बदबख्त फिरौन ने भी ऐसे ही किया था। एनीवे तो आगे फरमाते हैं कि फिर जब बस जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सही होने की, सही सलामत होने की खुशखबरी लाने वाला माँ कुर्ते के यहाँ आ पहुंचा, तो आते ही उसने वो कुर्ता उनके मुंह पर लाकर डाल दिया। बस आंखों को लगना था और दिमाग में खुशबू पहुंचना कि फौरन ही उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने सारा माजरा आपसे बयान किया। तो यानी आने वाले ने सारा माजरा याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। तो आपने बेटों से फरमाया, क्यों मैंने तुमसे ना कहा था कि अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते, ठीक है ना। अब इस तरह की बातें अगर हमारे सामने कोई मौलवी साहब कर दें, कोई शेख साहब कर दें, या कोई और ज्यादा इल्म रखने वाले कर दें, तो हम कहते हैं तो जो पता नहीं अपने आप को क्या पारसा समझता है, ये तो तकब्बुराना बोल बोल रहा है, और ये है वो है, ठीक है ना। हालांकि अगर कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट आकर के हमारे सामने ये बात करे कि भाई कंप्यूटर के हैंडलिंग मैं ज्यादा जानता हूँ तुम्हारे मुकाबले में, हम उसको कभी भी मुतकब्बिर नहीं कहते, राइट, कि अपने इल्म के ऊपर उसको बड़ा नाज है और ये तकब्बुराना जुमला बोल रहा है, राइट, कभी भी नहीं कहते, ठीक है। क्यों नहीं कहते? इसलिए कि इसका जवाब अगर आप दे दें, क्यों नहीं कहते हम उसको? जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है वो आकर घर में बोलता है कि भाई मुझे कंप्यूटर हैंडलिंग ज्यादा अच्छी तरीके से आती है, तो आप मुझसे सीख लें, हम उसको मुतकब्बिर नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? जबकि दीन के अंदर कोई अगर हमें आकर के ये बात कह देना, तो हम उसको मुतकब्बिर का लेबल फौरन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इसका जवाब दें, सवाल पहले सबने, फिर उसके बाद जवाब दें। दुनिया की मोहब्बत है यार, क्या मतलब हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतन, माशाल्लाह जबरदस्त आपने हदीस मुबारक का इस्तेमाल किया है। हर बुराई का जो जड़ है वो दुनिया की मोहब्बत है, आपने कहा हर ऐसे सवाल के जवाब में दुनिया की मोहब्बत, ठीक है, तो बेहतरीन जवाब है आपका, हम तो उसका इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही फरमाया है। लेकिन हम चाह रहे थे कि अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इस बात को, क्यों उसकी अजमत होती है दिल में, ये भी सही जवाब नहीं है। बिकॉज वी थिंक वी आर एक्सपर्ट इन दीन आवर सेल्व्स. एग्जैक्टली, है ना. कंप्यूटर में वी एक्नॉलेज दैट वी डोंट नो. कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर हैंडलिंग के अंदर, वी एक्नॉलेज दैट वी डोंट नो एंड वी डोंट नो, सो वी एक्नॉलेज इट, वी एक्सेप्ट इट. दीन के अंदर में वी डोंट नो बट वी नेवर एक्नॉलेज इट. हमें नहीं पता होता लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते. हम कहते हैं नहीं, मुझे पता है, दीन मुझे पता है. तो तुम कौन होते हो ये बात करने वाले. हालांकि दूसरे फील्ड्स के अंदर हम ये कभी भी नहीं कहते. वहां पे हम अपनी जहालत को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वहां पे अपनी कम इल्मी को जो एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, वहां पे अपना सारे तस्लीम खम कर रहे होते हैं एक्सपर्ट्स के सामने, सिवाय दीन के, सिवाय दीन के. अच्छा, अब ये जवाब तो हो गया मेरे सवाल का, लेकिन अब अगला सवाल इसके ऊपर भी कि ऐसा क्यों है कि हम दीन में एक्सेप्ट नहीं करते, दुनिया के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, दीन में एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी क्या वजह है. बिकॉज वी थिंक, हाँ, न्यूरो साइंस में अपनी जहालत को एक्नॉलेज करते हैं. जी एग्जैक्टली. हम अपने आप को दीन में किताब से पढ़कर खुद सीखने को सही समझते हैं. नहीं, मजे की बात यह है कि हमने किताब में पढ़ा भी नहीं होता है. मजे की बात तो ये है कि हमने नहीं पढ़ा होता है, हमें नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी जो है ना, वो हम समझते हैं कि हमें ज्यादा पता है. अजीब अजीब मामला है. किताब पढ़ने वाले को तो फिर चलो कुछ पता है ना, तो उस बुनियाद पर कुछ है. ऐसे भी हैं और बहुत ज्यादा हैं, नहीं पढ़ा कुछ भी फिर भी जो है ना, यही एटीट्यूड होता है. ठीक है, तो ऐसा एटीट्यूड कहाँ से बन गया, क्यों बन गया हमारा, ये इंटरेस्ट नहीं, दुनिया का फायदा सामने नहीं, एटीट्यूड बन गया. बस सादा सा जवाब ये है इसका, बहुत ही सिंपल सा, दो दो लफ्ज में इसका जवाब है. बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ द मीडिया. ठीक है ना, दो चीजें हमारा जहन ऐसे बनाती हैं और बड़ी कामयाबी के साथ बना देती हैं. एक होता है तालीमी निजाम, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी. जितना इस तालीमी निजाम में आप ऊपर जाते हैं ना, उतना ज्यादा आप इंडोक्ट्रिनेटेड होते हैं इस समझ में कि आपको ज्यादा पता है. जितना ऊपर जाएंगे ना, उतना ज्यादा मुझे ज्यादा पता है आपके दिमाग के अंदर, आपके रग रग रेशे रेशे के अंदर रच बस जाएगा. ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर बाहर निकल आते हैं ना, तो उसके बाद फिर जान नहीं छूटती, उसके बाद फिर इंडोक्ट्रिनेशन खत्म नहीं हो जाती, फिर वो टेक ओवर कर लेता है आपका मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो. अच्छा, मीडिया से मुराद सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया, अखबार, जराइद, और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका सोशल मीडिया, आपका जिस किस्म का भी मीडिया, सारा का सारा मीडिया, ये आपकी जान नहीं छोड़ता. आपकी इंडोक्ट्रिनेशन, आपकी जहन साजी या जहन के जो शिकस्त रेख्त है ना, ये आपकी जारी रहती है, ये मुस्तकिल जारी रहती है. ठीक है ना, तो अगर अपने आप को बचाना है ना इन दोनों चीजों से, तो इन दोनों सिस्टम से अपने आप को यानी बचाना होगा, इज्तेनाब करना होगा, वरना नहीं बच सकते इस सोच से. ठीक है, बाकी चंद मिनट में अगर हम इस पे कुछ कर लें खत्म. तो कहते हैं कि इनकी आंखें, हाँ, तो जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते, और इसलिए मैंने तुमको यूसुफ अलैहिस्सलाम के तजस्सुस के लिए भेजा था, यानी उनको तलाश करने के लिए भेजा था. देखो, आखिर अल्लाह ताला मेरी उम्मीद रास लाया. उनका ये कौल इससे ऊपर के रुकू में आ चुका है. तो उस वक्त सब बेटों ने कहा कि ए हमारे बाप, हमारे लिए खुदा से हमारे गुनाहों की दुआएं मगफरत कीजिए. हमने जो कुछ आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में तकलीफ दी, हम बेशक खतावार थे. मतलब यह है कि आप भी माफ कर दीजिए, क्योंकि आदतन किसी के लिए इस्तगफार वही करता है जो खुद भी मुआवजा करना नहीं चाहता. ठीक है, तो कुदरतन आज सुबह खवातीन की क्लास के अंदर भी यही बात हो रही थी, सूरह बनी इसराइल की आयत की तफसीर के अंदर, के वो जो बल्कि शायद हदीस भी है ना, वब्तगू इलैहिल वसीला, के अल्लाह ताला की तरफ जो है वो वसीला ढूंढो. ठीक है, तो वसीला ढूंढने का जायज तरीका क्या है, अल्लाह ताला की तरफ पहुंचने का वसीला ढूंढो, यानी वास्ता तराश करो कि तुम अल्लाह ताला के मुकर्रब बन सको. उसका नाजायज तरीका ये है कि तुम जो है वो किसी को वसीला समझ करके उसकी इबादत शुरू कर दो और उससे दुआ मांगना शुरू करो. ये नाजायज तरीका है. ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ताला तक वसीला ढूंढने का जायज तरीका क्या है? वो ये है कि जो मुत्तकीन है, जो मुत्तकीन है और जो सही मानों में अहले हक उलमाए कराम है, तुम उनसे सीखो और उनसे दुआ करो, अपने लिए दुआ करो। ये जायज तरीका है अल्लाह ताला तक पहुंचने का, वसीला अख्तियार करने का। ठीक है, तो ये एक नेक अमल है अल्लाह वालों के साथ ऐसा ताल्लुक हो कि उनसे जो है वो दुआ की दरख्वास्त की जा सके, और यानी ऐसे ही बस वो ना यानी क्या कहते हैं, रस्मी तौर पे दुआ की दरख्वास्त नहीं, बल्कि ऐसे दुआ की दरख्वास्त के जो आपके ताल्लुक की बुनियाद पर हो, वो भी आपको जो है ना वो अपना ताल्लुक वाला समझते हो और आपके लिए फिर वो दुआ करें। ये जायज तरीका है अल्लाह ताला तक वसीला तलाश करने का। ठीक है, तो इन बेटों ने भी एग्जैक्टली यही काम किया कि ये खुद भी अल्लाह ताला, ये क्या अल्लाह के बंदे नहीं थे? क्या अल्लाह ताला इनकी दुआ नहीं सुनता था? ऑफ कोर्स सुनता था, लेकिन इनका गुमान अपने वाले साहब के बारे में क्या था कि ये अल्लाह वाले हैं, ये मुत्तकी हैं, और अल्लाह ताला खुद फरमाता है इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकी, कि अल्लाह ताला जो है वो तत्वा वालों से, नेक लोगों से जो है वो कबूल किया करता है। तो भाई कबूल क्या करता है? अमाल भी कबूल करता है, दुआएं भी कबूल करता है। तो फिर दुआओं के लिए कहना, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से भी साबित है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने छोटों तक से जो है वो दुआ के लिए कहा, और छोटों ने जो है वो बड़ों से दुआ के लिए कहा। ये तो सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। किसी ने जरा एक मैसेज लिखा है, उसको पढ़ करके देख कर फिर उसके बाद खत्म करते हैं आज की क्लास, कि एक्चुअली वी अंडर एस्टिमेट द ब्लेसिंग ऑफ बीइंग बोर्न मुस्लिम एंड सो वी थिंक दैट वी नो टू मच अबाउट इस्लाम एंड डोंट गिव दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट टू एन आलिम देन वी गिव टू ए डॉक्टर और प्रोफेसर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वी अंडर एस्टिमेट द ब्लेसिंग ऑफ बीइंग बोर्न मुस्लिम, बट आई वुड रादर वॉन्ट टू एड टू इट कि इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग द ब्लेसिंग, इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ बींग बोर्न मुस्लिम, इट इज फार बियॉन्ड दैट। वी आर प्रोग्राम्ड, ये हमारे ऊपर काम किया जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से हमारे ऊपर काम किया जाता है कि आप जो है ना वो अपने आप को अल्लामा समझना शुरू कर दें, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू डोंट, आप अपने आप को अल्लामा समझें, और जो दीन का इल्म रखने वाले लोग हैं, प्रॉपरली उन्होंने इल्म हासिल किया है, उनको जो है ना वो आप ना रिस्पेक्ट दें। अब ये कैसे हमें प्रोग्राम करते हैं, ये इतना खुल करके नहीं करते कि हमें जो है वो बड़ा आसानी से बात समझ में आ सके। ठीक है ना, ये ऐसे तरीके से करते हैं कि जो कि स्पैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, ये लेक्चर्स के अंदर, किताबों के अंदर और सोहबत के अंदर अपनी, ये आपका जहन जो है वो इस तरीके से बना रहे होते हैं। इस वजह से कोई अगर पूछे ना आपसे कि मुझे बताए कैसे होता है ये सब कुछ, तो आप 1, 2, 3, 4 पॉइंट सामने रख दें और वो प्रूफ कर दें, इतना आसान काम नहीं है इसको प्रूफ करना। ठीक है, इसके लिए तो बेशुमार मिसालें होती हैं, आप पढ़ते चले जाएं और फिर मिसालें आपके सामने आती चली जाएंगी, तो देखो ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, लेकिन अदरवाइज इतना आसान नहीं है काम करना। बहरहाल ठीक है, फिर अल्लाह ताला से दुआ करता रहा बात के समझा तो फिर दाफ़ नुमाए वाफ़ दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।